તારીખ 7/10/1994 શ્રી સમયસાર કલષ્ટિકા શ્લોક નંબર 181 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 78.
કર સકે ये तो स्वरूप निश्चय के बाद जो विज्ञान का प्रयोग चलता है उसको आगे देना है। इसके सिवा उसके नीचे की कोटि वाले जो परिणाम है मनुष्य के उसमें ये ज्ञान वेदन आविर्भूत हो सकता नहीं। ज्ञान वेदन आविर्भूत हो सकता है उतनी तो बात नहीं, लेकिन ज्ञान वेदन है कि नहीं उसका भी पता नहीं चलता। ज्ञान में हमारे ज्ञान में ज्ञान वेदन है कि नहीं है इसका भी पता नहीं चलता। इसलिए मनुष्य को पूछिए कि आपको ज्ञान वेदन महसूस होता है, ज्ञान वेदन कैसे होती है? हम ज्ञान से जानते हैं लेकिन ज्ञान में ज्ञान का वेदन है, उस वेदन को जो समझ ही नहीं सकता है तो वेदन तो वेदन से समझा जाता है, वेदन तो विचार से समझा नहीं जाता। इसलिए वो बात न समझ में आती है न पकड़ में आती है, और इस तरह से एक विशिष्ट भूमिका की परिस्थिति है जहां से ज्ञान वेदन आविर्भूत हो सकता है। तथा ज्ञान वेदन आविर्भूत नहीं होता है, जानकारी हो जाए परलक्ष्य ज्ञान में इसका तो कोई कीमत नहीं है, इसका तो कोई स्थान भी नहीं है, इससे कोई फायदा हो जाए। प्रयोग की भूमिका में ही पकड़ने में आता है, और सबसे पहले अनुभवांश से प्रतीति आती है, मैंने स्वरूप निश्चय होता है, उसमें पहले सबसे पहले वेदन से वेदन को जाना है, उसके पहले कोई जानने का नहीं बनता, वेदन को पकड़ने में नहीं आ सकता, ये परिस्थिति नहीं। इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय स्वरूप निश्चय करने के हेतु से ही करना चाहिए, ऐसा कैसे ज्ञान की आज्ञा है। तो शास्त्र स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? तो अपना स्वरूप लक्ष्य हो जाए, हमारा पर लक्ष्य मिट जाए, यही कारण से शास्त्र स्वाध्याय का व्यवहार आयोजित किया गया है कि मनुष्य को शास्त्र स्वाध्याय नियमित रूप से रोजाना करना चाहिए और हो सके उतना विशेष रूप से भी करना चाहिए।
यही मत देवदर्शन का है, यही मत देवदर्शन का है, देवदर्शन का उद्देश्य भी यही है उद्देश्य।
हाँ, वो तो जो ज्ञानियों का उपदेश है, यही आचार्यों का उपदेश है, यही कीर्तन का उपदेश है, तीनों के उपदेश में अंश मात्र भी फेर नहीं हो सकता। नियम को जो हितोपदेश दिया जाता है, कल्याणकारी उपदेश दिया जाता है, उसमें तीर्थंकरों का उपदेश है वैसा ही ज्ञानी गुरु का उपदेश है, वैसा ही संतों का उपदेश होता है। इसलिए इस विषय में तो कहीं भी विकल्प करना योग्य नहीं है कि ये ज्ञानी ऐसा कहते हैं, वो शास्त्र वैसा कहते हैं, तीर्थंकर का ऐसा विधान है, कई लोगों को विकल्प करने की बात नहीं है। ज्ञान वेदन को यहाँ ज्ञान गुण ऐसा मिला, क्या थोड़ा उसको डिस्टिंग्विश करने का अभिप्राय है, ज्ञान गुण ऐसा मिला, अनुभव रूप परिणमाता है ज्ञान ऐसा नहीं लिया, ज्ञान गुण ऐसा मेरे पति के नाम निर्द्रा के संसार का किसी भी परमाणु का 142 नंबर का कलश है। उस कलश में अंतिम पद ऐसा है कि ज्ञानम ज्ञान गुणम बिना कथमपि प्राप्त क्षमते नहीं। आगे लिखा है कि शताम महाव्रत तपो भारेण सपना स्थिरम महाव्रत आदि महान तपस्या से भार से कोई सूत मरो तो सूत मरो लेश ही पाओगे, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा लिखा है। और आत्मकल्याण यानी आत्महित कैसे होगा कि ज्ञानम ज्ञान गुणम बिना प्राप्त क्षमते नहीं। मोक्ष की प्राप्ति, निद्रा की प्राप्ति, शुद्धि की प्राप्ति ज्ञान ज्ञान गुण बिना नहीं हो सकता। तो इसकी टीका करते हुए राजमंदिर लिखते हैं, वो 142 पृष्ठ की टीका में वो बात है राजमंदिर। ज्ञान गुण मैंने क्या, तो जो स्वयं का अनुभव है, स्वरूप का वेदन है, वही ज्ञान गुण है। ज्ञान ज्ञान का वेदन करे या अपने का स्वयं का वेदन करे, इसी का नाम ज्ञान गुण है। और यही ज्ञान गुण स्वतंत्र रूप परिणमन का कारण है, यही निर्जरा का कारण है, यही मोक्ष का कारण है। पहले भी कहा सर्वप्रथम पुरुष निश्चय के काल में अनुभवांश से प्रतिक्रिया भी है, यह मेरा ऐसा स्वभाव है। अनुभवांश मैंने ज्ञान वेदन का अंश, जो 751 पत्र में गोपाल जी ने दूसरा संकेत बताया, परमार्थ की स्पष्ट अनुभवांश से प्रतीति, उसको हम दूसरा संकेत कहते हैं। यानी निश्चय परमार्थ निर्विकल्प समीर दर्शन का अंग है, अंग है, मैंने अनन्य कारण है। तो बात वहां से वेदन वेदन के पत्र पहले चले आती है। उसके पहले प्रयोग करता है वेद ज्ञान का, अपने आप में अवलोकन से वेद ज्ञान का प्रयोग करता है। जो कुछ रहता है उस स्वरूप के अंतर खोज और तत्व जिज्ञासा रहती है, तो मेरा स्वरूप कैसा, जिस स्वरूप को अवलंबन करते हुए जीव परमात्मा एक समय पर उपयोग के एक अंश अनंत में भाग माता एक अंश चित नहीं होते, ऐसा क्यों इसके परिणाम में हुआ, कि इसका कारण क्या, इसका कारण स्वरूप को ऐसा अद्भुत है कि जिसकी महिमा तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य ध्वनि में गाई, फिर भी ये महिमा पूरी वो गा सके नहीं, ऐसा मेरा महान स्वरूप कैसा है, इसकी खोज चलती है। और ज्ञान वो ज्ञान स्वरूप है, आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान में ही ज्ञान की खोज चलती है, अपने में ही ज्ञान की खोज चलती है। ज्ञान खोज करने वाला ज्ञान होता है, और कहाँ करता है, अपने आप में, वहां से उसको इतना पता चलता है कैसे चलता है। ये सवाल अवश्य हो सकते फिर कैसे चलता है, कि अनेक प्रकार के ज्ञाकार ज्ञान में आते हुए भी ज्ञान ज्ञान किसी से स्पर्शित नहीं होता, यानी ज्ञान में कुछ मिलावट नहीं होती। अनंत काल से अनंत विभावों के साथ ज्ञान रहा, विज्ञान निर्लिप रहा, तो ज्ञान का जो असंगतपना है, निर्लेपना है, वो नजर आता है से नजर आता है कि ज्ञान की एक रूपता से नजर में आता है। एकरूपता कहाँ है? ज्ञान सामान्य में। और वेदन कहाँ है? तो ज्ञान सामान्य में। यहाँ से वेदन का पता चलता है। वो ज्ञान अपने आप को देखता है कि अनेक चित्र विचित्र आकार ज्ञान में आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। बगल में रागादि परिणाम अनेक प्रकार के विभाव आते हैं, चले जाते हैं, ज्ञान ज्ञान रह जाता है। ऐसे ज्ञान सामान्य को अवलोकन करके इस सामान्य प्रबंध में विशेष रूप से जब मैं पढ़ा आता है तो जो वेदन अंश है उस वेदन अंश से स्वरूप निश्चय हो जाता है। तो वेद ज्ञान के प्रयोग के दौरान ये वेदन को करने में आता है, उसका स्वरूप निश्चय होता है। फिर ये वेदन का प्रयोग विशेष रूप से चलता है, तो ये अनुभव तक पहुँचता है, मानुभव तक उसकी पहुँच हो जाती है। वेदन की करते हाँ तो है वेदन अवस्था में है और कोई त्रिकालीय स्वरूप पहचानने में आया अपना शून्य स्वरूप, तो बहुत महान है। इससे ये तो बहुत महान है, अनंत गुण महान है, बहुत मैंने अनंत गुण महान है, अनंत अनंत सामर्थ्य उसमें भरा है, तो इसके मुख्यता प्रयोग हो जाएगी और वेदन कौन हो जाएगा। तो लक्ष्य के हिसाब से ऐसा होता है, किंतु वेदन के हिसाब से ऐसा नहीं होता है। मुख्यता दो प्रकार की, एक लक्ष्य के कारण से और एक वेदन के कारण। लक्ष्य के कारण से मुख्यता होती है विकालिक स्वभाव से, और वेदन के कारण से मुख्यता होती है वेदन के ज्ञान वेदन के। दो प्रकार है, बोलने के नाम रखे हैं, बहुत सुंदर दादाई है। काली नाथ की सत्ता का स्वीकार नितरांग भाव से हुआ, यह भाव स्वीकार करने वाला यह भाव कहीं भी चला नहीं जाता। मैंने वेदन साथ नहीं रहता है, वेदन से स्वीकार हुआ है, प्रकृति मैंने स्वीकार हुआ। किससे हुआ? नितरांग भाव। कैसा है नितरांग भाव? के संवेदन अनुभव तो अनुभव के वेदन में ही रहता है, अनुभव त्रिकाली में नहीं रहता। इसका मतलब है कि अनुभव तो अनुभव के वेदन में ही रहता है, परिणाम को गौण कहा है, पर्याय मात्र को गौण कही है, यह तो लक्ष्य की अपेक्षा से गौण कहा। लक्ष्य की अपेक्षा से गौण कहा था, अनुभव की अपेक्षा से गौण नहीं, वेदन की अपेक्षा से गौण नहीं। अनुभव की अपेक्षा से यही मुख्य है, वेदन की अपेक्षा से इसकी मुख्यता है। क्यों? कारण की द्रव्य का अनुभव होता नहीं, तो त्रिकाली है, अक्रिय चित्त बिंब है। कैसा है? अक्रिय चिंतित है, निष्क्रिय पदार्थ है, उसमें कोई क्रिया ही नहीं है। तो अनुभव तो त्रिकाली द्रव्य में होता नहीं। मेरा वितरागी तत्व है, इसका जहां मैं लक्ष्य करता हूं वहां तो वितरागी दशा प्रकट होती है। लक्ष्य के कारण से वेदन और वेदन के कारण से पहले लक्ष्य हुआ, परस्पर क्या बात है? मनुष्य जीव को संवेदनात सिद्धि, तो स्वसंवेदन से लक्ष्य की सिद्धि होती है, लक्ष्य लक्ष्य की कर्ता में वो वचन आता है। ध्यान मात्र से स्वसंवेदन से करना, तो स्वसंवेदन से जिसकी सिद्धि होती है उसमें लक्ष्य हो जाता है। पर लक्ष्य हो जाता है तो जहाँ लक्ष्य हुआ तो दशा तो अनुभव में आती है। जहाँ मैं मेरा लक्ष्य करता हूँ मित्रा की दशा प्रकट होती है, और यही मुझे मुख्य है। वेदन की अपेक्षा से तुम्हें मुझे मुख्य है, वेदन में आता है यही मुझे मुख्य है। लक्ष्य की अपेक्षा से भले ही उसको गौण किया, परंतु यह जो यह वेदन है उसको वेदन की अपेक्षा से गौण किया जाएगा तो नहीं करता, ऐसा कहता है। गुजराती में आपसे पढ़ लिया, वेदन से तेने गौण करी से नहीं जा रहे, हम कहते हैं तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्णानंद का नाथ को जाना और वेदन में आया, उस वेदन को तो गौण मत करे, हाँ उसको गौण मत करे, ऐसा करके बोला, यानी गौण तुम न करे। हाँ यह तो लक्ष्य कराने की अपेक्षा से तुझे गौण करने का कहा था, परंतु मुख्य तो यही है। जो आनंद अपने को प्रत्यक्ष वेदन में आता है, वेदन की अपेक्षा चलती है पत्रकारी को गौण करते हैं, लक्ष्य की अपेक्षा चलती है तो वेदन को गौण करते हैं। ये ज्ञानियों के बाद ही कोई अष्टपति लिखती है, कभी किसको गौण करते हैं कभी किसको गौण करते हैं, ये प्रकरण चलता है सारा अध्यात्म का। तो प्रयोजन का विश्लेषण, मुमुक्षु जीव को त्रिकालीय स्वरूप दिखाई नहीं देता क्योंकि अव्यक्त है, पर्याय व्यक्त है, प्रकट रूप है, जबकि त्रिकालीय स्वभाव अव्यक्त रूप है तो दिखाई नहीं देता। वेदन से उसका पता चलता है, संवेदन से उसका पता चलता है, तो सर्वप्रथम उसका लक्ष्य होता है। तो लक्ष्य होता है तो मित्रा की दशा का संवेदन आगे जाकर आविर्भाव हो जाता है। तो खोज से पहले अपने वेदन तक आना चाहिए, प्रयोग की भूमिका में। ज्ञान का जो सातत्य है, तो ज्ञान का जो निर्विकारीपना है, निर्लेपपना है, यहाँ से ज्ञान सामान्य का जो भी पकड़ आता है, ज्ञान सामान्य का फैक्टर जो पकड़ में आता है, वहां से वेदन तक पहुंच सकते हैं। तो ज्ञान के आधार से ही ज्ञान रहा है। ज्ञान अपना वेदन से देखे तो निरालंब निरपेक्ष है, ऐसा स्पष्टतया वहां अनुभव में आता है। फिर अनुभव से ये सब ठीक का कारण दे रहे, लक्ष्य हुआ बोला एक ही बात है। तो काफी मात्रा में स्पष्ट हुआ है, भिन्न भिन्न अनुभवी के अनुभवी महात्माओं के वचनामृत है, ये विषय को बहुत मात्रा में स्पष्ट हुआ है कि कितने हद तक बात को ले गए, संकेत क्या होता है, संकेत का कारण क्या होता है, और संकेत का कारण का भी कारण क्या होता है, ये सब तरीका बता सकता है। एकदम संकेत की पूरी लाइन जो लिया है, कहां से संकेत की लाइन बैठती है, बाकी सब बात है वो बाहर की बाहर की, उसके बाहर की बात है, संकेत की बात की बाहर है।
ज्ञान सामान्य में स्वीकारी तत्व में क्या अंतर है? ज्ञान सामान्य में स्वीकारी तत्व में क्या अंतर है?
अंतर तो वो है कि जो ज्ञान सामान्य है वो उपयोग का मैंने उपयोग रूप पर्याय का एक अंतरंग है। क्या है? ज्ञान के उपयोग रूप पर्याय का अंतरंग है। और इस उपयोग में जो अनेक प्रकार के ज्ञेय के आकार मालूम पड़ते हैं, ये उपयोग का बहिरंग है। तो ज्ञान विशेष कहो या ज्ञान उपयोग का बहिरंग कहो, बाह्य अंग कहो, एक ज्ञान के उपयोग का दो अंग है, एक बाह्य अंग है, एक अंतरंग है। अगर ज्ञान के उपयोग का अंतरंग को जो सामान्य रूप होने से सूक्ष्म है उसको अनुभव दृष्टि से देखा जाए तो क्या उसमें क्या अनुभव हो रहा है, इस उद्देश्य से देखा जाए तो ज्ञान और लाल भिन्न भिन्न मालूम पड़ता है। ज्ञान भेदन पकड़ने में आता, ज्ञान भेदन की पकड़ आती है, ज्ञान भेदन का आगे मूल चुप बना होता है और ज्ञान और लाल भिन्न भिन्न मार से हो जाता है। तीन विज्ञान का सच्चा प्रयोग है।
ज्ञान भेदन में स्वीकारी से तो आया नहीं,
उसको लक्ष्य में आता है। उसमें जो है प्रथम अवस्था में वो लक्ष्य को दर्द हो जाता है। लक्ष्य का विषय अलग है, वेदन का विषय अलग है। जो लक्ष्य का विषय है उसमें वेदन नहीं, और जो वेदन का विषय है उसका लक्ष्य नहीं। ये भीतर में परिणमन की रफत है, यानी टेक्निक है, ये खूबी है परिणमन की, ये खूबियां है। जिसका लक्ष्य है उसका वेदन नहीं, वेदन है उसका लक्ष्य। इस तरह से परिणमन करता है जो सम्यक है, वरना परिणमन सम्यक नहीं होता। दोनों साइड को इस तरह से संभालना होता है। आपको क्या बोलते हैं, जो सम्यक दर्शन का वर्णन करा, निर्विकल्प परमार्थ अनुभव संकीत का तीसरा प्रकार है। निर्विकल्प परमार्थ अनुभव उसी काल में संसार है तो सम्यक हो जाती है, शुद्ध परिणाम होने लगता है। तो ये संकीत का तीसरा प्रकार मैंने आखिरी प्रकार है, कोई सम्यक दर्शन है वास्तविक रूप से। इसके कारण रूप परमार्थ की स्पष्ट अनुभवांश से प्रतीति सूरज संकेत का दूसरा प्रकार है। दूसरा प्रकार मैंने पहला संकेत, दूसरा संकेत तीसरे संकेत का कारण है। और ये दूसरा संकेत का कारण कौन है? आप्त पुरुष के वचन की प्रतीति रूप, आध्यात्मिक पूर्ण रुचि रूप, प्रसन्न निरोधिता से आप्त पुरुष की भक्ति रूप, संकेत का पहला प्रकार है। प्रसन्न मत आग्रह जी वर्ते सदगुरु लक्ष्य, संकेत कहने बाकियों कारण नहीं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कारण है। सत्पुरुष के वचन की प्रतीति, वचन में कहीं शंका नहीं है, कैसा भी वचन कहा हो उसमें शंका न हो, कोई भी वचन का शंका नहीं है। बुद्धि मान्य करे या नहीं करे, दोस्तों इस प्रकार की प्रतीति जिस मनुष्य को आती है उनको तो बुद्धि ऐसी खड़ी नहीं होती है, ऐसा बुद्धि का विकल्प ही खड़ा नहीं होता है कि बुद्धि में के बाद बैठती है कि नहीं बैठती है, तो विकल्प नहीं होता है। एक योग्यता का सवाल है, वहां तक योग्यता नहीं होती है प्रथम पंक्ति के लिए, वहां तक बुद्धि है तो अपना देर जापन करने लग जाती है। तो जापन नहीं करके कहा जाता, क्या देर जापन है ऐसा? तो ध्यान करने के पहले पहचान करने के पहले तो परीक्षा पूरी करो, पूरी मत करो, फिर परीक्षा हो जाए उसके बाद में बुद्धि खड़ी होती फिर बुद्धि बढ़ जाती है, तुम्हारा काम नहीं है बुद्धि लगाने का विषय। पहले लगा दिया सब लगा दिया पहचान करके बाद में ये बुद्धि नहीं काम करते थे, तो जो विश्वास है जो प्रतीति शब्द लिया है प्राप्त पुरुष के वचन में विश्वास होता है। किसी को लगे कि ये अंधविश्वास है लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है, पहचान के काल में पूरी परीक्षा कर ली है बाद में विश्वास आया है, ऐसी बात। और उनके जो विकल्प है उसको तो आज्ञा करके उसको तिरुधारी करने के मुख्य अपूर्व रहते हैं, मानता है कि इसकी आज्ञा से मेरा कल्याण होने वाला है, इसकी आज्ञा में मैं चलूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा।
सन्यास के विधवा में आज्ञा करने की विधा
है, सन्यास के विधवा आज्ञा सबसे कहा है वो इसी को आज्ञा सबसे कहा है, पहचान करके जो आज्ञा के समर्पण आता है उसको तो आज्ञा सबसे कहा है, और जो शक्ति का कारण है इसकी आज्ञा सबसे तेज के लिए है, ठीक बात है। आता है कि दृष्टांत आज ऐसे आता है और फिर पेशेंट को इनके इंसेंटिव क्योर में यदि ले जाते हैं आईसीसी में तो डॉक्टर की आज्ञा में कितना रहना पड़ता है, तो इसको तीन दिन तक किसी से बात करने नहीं देंगे, बात करने तो नहीं देंगे लेकिन इस केयर यूनिट में किसी को जाने भी नहीं देंगे, तो उसका कब्जा करता है पेशेंट पर। तो आप कुछ भी हो इस पर कुछ भी लगता हो पेशेंट का, तो कोई भी माँ हो बेटे को नहीं मिल सकती और पति पत्नी भी नहीं मिल सकते, किसी का मुंह नहीं देख सकते, क्यों तो उसको कुछ भी फीलिंग आएगी विशेष रूप से जो भी आंदोलन चलता है फीलिंग का उसमें जो भी कुछ हो जाएगा तो हार्ट को इफेक्ट हो जाएगा, किसी से वो नहीं मिल सकेगा, किसी का मुंह नहीं देख सकेगा, होता है कि नहीं होता है। तो वहां तो हमको डॉक्टर की आज्ञा में पूरा पूरा रहना पड़ता है, अधूरा नहीं चलता, पूरा पूरा रहना पड़ता है, तो खाने को मिले वही खाना और जहाँ रहना है वहीं रहना, लेटे रहना तो लेटे रहना, बैठे रहना तो बैठे रहना, वो कहे जैसा करना पड़ता है, हमको अनुकूल नहीं है वो नहीं चलता, वहां यही बात हमको अनुकूल नहीं है वो नहीं चलता। देहांत के लिए हम तैयार हैं क्या, ऐसी आज्ञा में रहने के लिए विवाह होता है, देह का प्रयोजन है बहुत तैयार है, तो आत्मा के लिए हम कितने तैयार हैं, हमारी गरज कितनी है इसको पहला सबके कहता है, उसको पूरी गरज है उसको पहला सबके कहता है, उसको जो भक्ति आती है तो उसको सुंदर निरोधता आती है, उसका अपना पसंद कहीं नहीं चलता, ऐसे भक्ति आती है पहला पता है। इस तरह से कृपालु देव ने परमार्थ निर्विकल्प संवेद दर्शन और अनुभव के एक लाइन दिखा दिया है, तो तुमको संवेद दर्शन चाहिए यानी मोक्ष मार्ग चाहिए जिसका फल मोक्ष अवश्य आता ही है, तो इसका बीज ज्ञान, बीज ज्ञान कौन है, अनुभव ज्ञान का बीज ज्ञान कौन है, स्वरूप लक्ष्य है, स्वरूप के प्रति भगवान है, और बीज का बीज क्या है, आम चाहिए, आम का रस चाहिए, तो उसका जो गुठली आती है उसको गले में बोया जाता है, आम का फल बनता है, लेकिन अंकुर को क्या से फूटेगा, तो गुटली में भी एक गुटली है, वो भी है इसका, उसका शायद चुराएगा कौन सा भी है मेरे पास। हम जो ये बात इतनी फिक्स है तो फिर हमको इधर उधर क्यों जाना चाहिए, उधर उधर मेरे इस बात को छोड़ करके हमको दूसरे प्रकार का प्रयास और प्रयत्न क्यों होना चाहिए। अगर होता है तो हम इसकी आज्ञा में रहने के लिए तैयार
नहीं है। डॉक्टर में विश्वास नहीं होगा,
डॉक्टर में विश्वास नहीं है तो फिर तो मरने के अलावा दूसरा तो कोई रास्ता इसमें नहीं। बुद्धि है, बड़ी है, पर कितना गंभीर रोग से ग्रसित है इसका ध्यान होता है तो ये बात आता है। और जब वो उसकी गंभीरता का ध्यान नहीं है तो धर्म के क्षेत्र में तो वो ऊपर ऊपर की ही प्रगति करेगी। यथायोग्य यथार्थ मूल्य नहीं है, वास्तव में उनको अपना कल्याण ईमानदारी से नहीं करना है, सत्य ईमानदारी से कोई बात है। वास्तव में जरूरत नहीं है, उस समय पर की जरूरत लगी है अनंत बार, उस समय पर की भावना हुई है अनंत बार, उस समय पर की जिज्ञासा हुई है अनंत बार, तो इससे तो काम किया जा सकता है। भूलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा उसका आडंबर है जिसमें बोला जाता है क्या, तो भावना नहीं है, भावना का आडंबर है, तो जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा का एकमात्र आत्मकल्याण को लक्ष्य में रखकर बड़े भाव में निरस्त होकर और सत्पुरुष ज्ञानी के प्रति अत्यंत भक्ति में आकर और पूरी सरलता से सरलता मुख्य बात है सत्संग में रहना चाहिए, सही भूमिका है। तो ये तीन चार बात एक साथ जिसमें मुश्किल में है तो उसकी सफलता अवश्य अवश्य होती ही है, फिर तो उसमें निष्फल होने का चांस नहीं है। अगर उसमें ये बात नहीं है तो सफलता होने का भी आशा रखना अपेक्षा रखना व्यर्थ है। ज्ञान रूप से बात करी, ज्ञान गुण मैंने ज्ञान ज्ञान का अनुभव करें यही ज्ञान गुण है, और यही ज्ञान गुण जीव को शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप परिणमाता है। शुद्ध स्वरूप में अनंत गुण है उसको अनुभव रूप परिणमाता है, और यही मोक्ष का कारण है। विकार मोक्ष का है तो यही मोक्ष का उसका समाधान ऐसा है कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप है जो ज्ञान, वो जीव के शुद्धत्व परिणमन को सर्वथा लिए हुए हैं, उसमें दूसरे अनंत गुण जीव के शुद्धत्व रूप परिणाम के साथ होता है। ज्ञान गुण अनुभव में आता है और दूसरे गुण अशुद्ध रहते हैं, ऐसा लगता है। जो ज्ञान गुण का वेदन है, ज्ञान में ज्ञान का वेदन है, उस परिणाम के साथ आत्मद्रव्य में जो अनंत गुणों का एकत्व है, अभिन्नत्व है, यही कारण से दूसरे गुण जो ऑटोमेटिक परिणाम करने लग जाते हैं। द्रव्य की अभेदता का, एकत्वता का, अभिन्नता का सूचक है, इसलिए कहते हैं कि स्वरूप स्वरूप के अनुभव रूप है जो ज्ञान, वह जीव के शुद्धत्व परिणाम को सर्वथा लिए हुए हैं। तो जीव के शुद्धत्व परिणाम में सर्वगुण के शुद्ध परिणाम को सर्वथा लिए हुए हैं, ऐसा कभी नहीं बनता है कि ज्ञान गुण तो वेदन में आए और दूसरे गुण सदादि और मुख्य गुण है तो अशुद्ध रह जाए, ऐसा तो बनता नहीं। स्वयं श्रद्धा चारित्र में भी वितरकता आ जाती है, सुख में भी दुख निकल के सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, सबके सब गुण जो है वो आ जाते हैं। जिसका शुद्धत्व परिणाम होता है उस जीव को शुद्ध स्वरूप का अनुभव अवश्य होता है, होता नहीं, अन्यथा सर्वथा प्रकार अनुभव नहीं होता। क्या कहते हैं तो जिसका शुद्धत्व इसे शुद्धपना रूप परिणाम होता है, उस जीव को अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभव अवश्य होता है। मैंने उसको ये शंका नहीं रहती कि मुझे ज्ञान वेदन आया और संवेदन हुआ तो शुद्धात्म का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, तो उसमें कोई धोखा नहीं। गुरुदेव ऐसा कहते थे, सभी ज्ञान तो जिनको अपना संवेदन में अपना अनुभव स्वरूप का होता है, जो अनुभव का विषय जो आत्मस्वरूप है वो कहता है कि जैसे केवल ज्ञान में आत्मा अनुभव में आता है वैसा है। क्या कहते हैं कितने हद तक प्रकृति आती है, तो मेरे अनुभव में जो आत्मा आत्मस्वरूप का अनुभव आया वैसा ही भगवान ने आत्मा को केवल ज्ञान में जाना है, वैसा जिनेन्द्र देव ने आत्मा केवल ज्ञान में जाना वैसा ही मुझे आज अनुभव में आ रहा है, ऐसा आता है। इसलिए कहते हैं कि धोखा नहीं, अन्यथा सर्व प्रकार अनुभव नहीं, उतनी निशंकता आती है। कितनी निशंकता आती है, उतनी निशंकता आती है कि केवल ज्ञान में जैसा आत्मा जानने में आया ऐसा मेरे अनुभव में आया, इससे कोई धोखा नहीं, मैंने शंका नहीं है। अगर ऐसी निशंकता नहीं होती तो अन्यथा प्रकार सर्वथा अनुभव नहीं होता, फिर अनुभव की निशंकता है। कोई भी इस विषय में कुछ भी कहे, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, मुझे अनुभव हुआ या नहीं हुआ तो अनुभव को किसी को पूछने की जरूरत नहीं, और दूसरे लोग स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकार करते हैं इसकी भी अपेक्षा नहीं है, ऐसा निशंक अनुभव होता है। अगर इतनी निशंकता नहीं आई तो अन्यथा सर्वथा प्रकार अनुभव ये होता ही नहीं, कोई नहीं। इसलिए शुद्ध स्वरूप का अनुभव मोक्ष का कारण है, इसलिए ऐसा अनुभव मोक्ष का कारण है, और ये शुद्धत्व रूप परिणाम है मोक्ष की जाति का परिणाम है, जाति अपेक्षा से दो जाति लेके जाते हैं। क्वालिटी में फर्क नहीं, क्वांटिटी में फर्क है, डिग्री में फर्क है, जाति लेके जाते हैं। इसलिए शुद्ध स्वरूप का अनुभव मोक्ष का कारण है। यहां मैंने ऐसे प्रसंग में इस मामले में अनेक प्रकार के मिथ्या दृष्टि, जिसको ऐसा अनुभव नहीं है और जो इस विषय में अनजाने हैं, ऐसे अनेक प्रकार के मिथ्या दृष्टि जी नाना प्रकार के विकल्प करते हैं, वो अनेक प्रकार के विकल्प करते हैं। साक्षात्कार ऐसा होगा, मैंने उसको क्या कल्पनाएं हो जाया करती है। ये मार्ग ठोस वास्तविकता का है, बिल्कुल कल्पना का मार्ग नहीं है। ऐसे प्रयोजनभूत विषय में कल्पना हुए यही विपर्यास है, यानी गणित मिथ्या है, ठोस वास्तविकता का विषय है। यहाँ अनेक प्रकार के मिथ्या दृष्टि थी, नाना प्रकार के मैंने अनेक प्रकार के विकल्प करते हैं तो उनका समाधान करते हैं, तो अनेक प्रकार के जो उनके विकल्प है उसके सामने समाधान देते हैं। इसको क्या क्या विकल्प है कि कोई कहते हैं कि बंद का स्वरूप जानकर ऐसा चिंतन करना कि बंद को छुटेगा और कैसे छुटेगा, ऐसी चिंता मोक्ष का कारण है, ऐसा कहते हैं तो वे मिथ्या है, मिथ्या दृष्टि है। किसको लिया आचार्य महाराज ने? स्वर्णानुज युग के विद्वान को लिया है। किसको लिया? बंद का प्रकरण किसने आता है? कालानुयोग में, कर्णानुयोग में आता है। तो कर्णानुयोग में बंद का अनेक प्रकार का उदय उत्सम सोषम स्थिति उपवास प्रशक्ति वो सदेश अनेक प्रकार की बातें आती हैं। कैसे बनता है, किसके प्रकार का बनता है, कैसे सुनता है, सबको सुनता है, बहुत सी बातें हैं, मैंने हजारों बातें हैं बंद के प्रकरण में, ऐसी हजारों बातें हैं कर्म का प्रकरण में। तो आपका दौरा ग्रंथ को ले लेना, जैसा स्वामी जी टीका वाला कितना जबरदस्त बात किया है। तो कहते हैं कि ऐसा कोई बंद का स्वरूप जान लेता है, फिर उसका चिंतन करता है या अभ्यास करता है कि बंद को छूटेगा और कैसे छूटेगा, किस प्रकार से छूटेगा और किस काल में छूट सकता है, ऐसे ऐसी चिंता करना, ऐसा अभ्यास करना, ऐसा जानकारी करना ये मोक्ष का कारण है, ऐसे ही कहने वाला मिथ्या दृष्टि है। तो क्या देंगे उसको? ये तो सही कारण नहीं है मोक्ष का। मोक्ष का कारण जैसा है वैसा कहते हैं, यहाँ से गलत चिंता का प्रारंभ करते हैं। इसके पहले प्रस्तावना किया कि सरस की टीका का प्रस्तावना होने चले, तो सरस में आचार्य महाराज कहना क्या चाहते हैं, इसका भावार्थ लेकर के इसकी बात किया। तो मोक्ष का कारण ऐसा है कि यदि प्रज्ञा क्षेत्र आत्मकर्म विवश अंतः संधिबंधे नहीं पतती, मोक्ष का कारण ही है। ये मैंने वस्तु स्वरूप से प्रकट है, हम कहीं कल्पना करके नहीं बताएंगे, वस्तु का स्वरूप प्रकट है। तो किस आधारित बात है हमारे तो वस्तु के स्वरूप के आधार पर बात करती है। देवदर्शन की विशेषता यहाँ है, तो उपदेश बोध तो सभी संप्रदाय में है, धर्म का कोई संप्रदाय पाप करने को नहीं भूलता। क्या कोई करो युवा चलो ये कोई धर्म का संप्रदाय नहीं आएगा, लेकिन ये उपदेश बोध
वस्तु के स्वरूप पर आधारित होना और जगह जो उद्देश्य देते हैं उसके लॉजिक देते हैं लेकिन उसका विज्ञान नहीं है, जबकि नैन दर्शन में इसका विज्ञान भी है और इसका लॉजिक भी दोनों बात है। तो एक विशेष बात है वस्तु स्वरूप का। वस्तु स्वरूप से प्रकट है जो आत्मा के शोध स्वरूप अनुभव समर्थ पड़ने से परिणमा हुआ जीव का ज्ञान गुण प्रज्ञा का अर्थ क्या क्या नियम का लिया वह वस्तु स्वरूप से प्रकट है, कल्पना नहीं है। क्या क्या प्रकट है कि प्रज्ञा क्षेत्रीय प्रज्ञा माने क्या कि जो ज्ञान के पर्याय अंतर्मुख होकर के आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने में समर्थ हुई है, ऐसा जो परिणाम हुआ जिनका ज्ञान गुण मैंने ज्ञान जीवन है वही है प्रज्ञा श्रेणी। उसको प्रज्ञा कहेंगे तो सामान्य ज्ञान के पर्याय तो यहाँ से ज्ञान का उपयोग है उसको प्रज्ञा श्रेणी नहीं कहा है।
प्रज्ञा श्रेणी को प्रतिज्ञा श्रेणी को जानने वाला तो प्रज्ञा श्रेणी की प्रतिज्ञा विधि को जानने वाला हमारियों के कहाँ कहाँ बंद है प्रकार का बंद है तो जाने में क्या बाधा है।
जानने में बाधा नहीं है, उसकी चिंता करने में बाधा है, उसका चिंतन करने की जरूरत नहीं है। क्या उस चिंतन में रुकने की जरूरत नहीं है,
जानना जरूरी है।
जानते जानते में शरीर आ जाए प्रयोजन हो उतना इससे ज्यादा नहीं। बंद तत्व नव तत्वों में बंद तत्व है और वो राग रस रूप बंद तत्व है, उतना प्रयोजन है उतना जान ले। कहां से जान ले? अपने परिणाम से जान ले, अपने अनुभव से जान ले, शास्त्र से नहीं, अपने परिणाम से जाने कि मेरे में राग रस कितना चलता है। यही बंद तत्व है कैसा लेना है तो उतना प्रयोजन होता है, इससे ज्यादा प्रयोजन नहीं है। तो शास्त्र में लंबी सारी बात आती है वो कोई प्रयोजन की चीज नहीं है, इससे इसकी मुख्यता होनी नहीं चाहिए। और हमारे पास हमारे अनुभव करने के बाद भी हमारा ज्ञान से कोई अधिक स्पेयर बचता हुआ ज्ञान है, स्पेयर है हमारा ज्ञान, तो करना भी उसमें लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। किसी ज्ञान को लगती है किसी ज्ञान को नहीं लगती है, किसी को बोझा लगता है। तो ऐसे शास्त्र के अनेक प्रकार के विकल्प में भी आकुलता होती है, आकुलता होती है वो अशांति है। तो ऐसी अशांति की सभी जिला जलावे या नहीं जलावे
जानने में आपके साथ क्या होता
है, जानने में आपके साथ क्या होता है, उसमें आकुलता
होता है नहीं जानने की बात है।
जानने में तो उतना परिणाम होते हुए जो जना जने जाएगा वो जानने में आ जाएगा, तो आ जाएगा। लेकिन जो शास्त्र में उपयोग माते हैं उनमें तो आकुलता होगी होगी और होगी ही। लगेंगे कांत शास्त्र पढ़ोगे पक्षों पक्षों समझी जाओगे,
विरोधन ऐसा नहीं है, ऐसा विरोधन नहीं है। प्रयोजन तो अपना सामने है, उनको अपना स्वरूप समझना है, इसलिए
स्वरूप समझना है। तो स्वरूप समझने की बातों में उपयोग लगाए, बंद की बातों में
बंद को जाने के नाम से
बंद की बातों में उपयोग क्यों लगाए,
बंद को जाने के नाम से
कहा उसको जानना है,
वही जानना है
क्योंकि यही मन में बंद है, बंद तो अपने परिणाम में है।
उसको नहीं जानेंगे तो
जाने परिणाम में जाने
નિર્ગુણ સાત તત્વો ને નિશ્ચયથી પરમાર્થથી જાણવા સમ્યક દર્શન છે. સાત તત્વો ને પરમાર્થથી જાણવા સમ્યક દર્શન છે. એમાં આવી ગયું બંધ તત્વ.
સાત તત્વો જો પૂર્ણાર્થ ને વિશે જાણવા સ્વભાવ કી મહિમા સે સત પદાર્થોં કે પ્રતિ રસ બુદ્ધિ ઓર સુખ બુદ્ધિ ટૂટ જાતી હૈ જબ કિસી મુમુક્ષુ કો સ્વભાવ કી પહેચાન આયે પહેચાન આને સે મહિમા આયે ઓર સત પદાર્થ કે પ્રતિ રસ બુદ્ધિ ઓર સુખ બુદ્ધિ ટૂટ જાતી હૈ ઓર સ્વભાવ મેં હી રસ આતા હૈ स्वभाव को छोड़ करके दूसरा सब निरस लगता है तभी अंतर की सूक्ष्म संधि ज्ञात होती है. इसके पहला भीतर में संधि मालूम नहीं करते तभी अंतर की सूक्ष्म संधि मालूम पड़ती है. ऐसा कभी नहीं होता कि पर में तीव्र रुचि हो पर उपयोग अंतर में प्रज्ञा शनि का कार्य करे ऐसा कभी नहीं. ज्ञान भले ही शास्त्र में अभ्यास में लगे लेकिन उसका उसको मंत्र में प्रज्ञा छे उसका उपयोग काम कर सकेगा
तीनों उपयोगों का तीनों अनुयोगों का अध्ययन करना अभिजेत नहीं किया.
तीन अनुयोग का अध्ययन
अभिजेत नहीं किया
अध्ययन का निषेध नहीं किया लेकिन अपनी शक्ति अनुसार करने की बात
है.
और अध्ययन का निषेध तो इसलिए नहीं था कि भगवान की वाणी है उसका कोई अनादर नहीं हो जाए लेकिन निषेध नहीं किया इसलिए हमको चारों अनुयोग का अध्ययन करना ही चाहिए ऐसी बात नहीं है. ये चार अनुयोग हो जाने आता है भगवान के वाणी का अध्ययन करके शास्त्र का अध्ययन करके अगर वो हमारे परिणमन को उत्पन्न नहीं करते जैसे इस प्रकार से आज्ञा के अनुसार तो यही वाणी का अनादर हो ही गया वो अधिकार विधि हो गया. अगर हम परिणमन कर लिया तो सारे अनुयोग का आदर हो ही गया. तो 535 नंबर के पत्र में आया है भगवान जी तो भी उतना ही सबसे को परिणाम है कि निज में निज बुद्धि करे और पर में निज बुद्धि का त्याग करे तो सब शास्त्र पढ़ चुका रत नियम संयम सब कुछ कर चुका शास्त्र आदि सब कुछ कर चुका. उत्कृष्ट के उत्कृष्ट नियम उत्कृष्ट में उत्कृष्ट संयम उत्कृष्ट में उत्कृष्ट व्रत जिसमें सन्निहित है ऐसा जो शुद्धोपयोग है उस शुद्धोपयोग का मूल्य उतना है उसको ज्ञानी भी नमस्कार करते हैं शुद्धोपयोग में सब आ जाता है. इसलिए हमारी शक्ति को हम शुद्धोपयोग में ही लगाएं और शुद्धोपयोग करने में ही लगाएं क्योंकि दूसरे बातों में हम कहीं सफल जाएं ये काम करें. Thank you.